नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। चीन में एक बार फिर रहस्यमय बीमारी का कहर फैल गया है। ये बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि अस्पताल बच्चों से भरे हुए हैं, स्कूल की छुट्टियां कर दी गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी बयान जारी करके इस पर चिंता जताई गई है। इस रहस्यमय न्यूमोनिया से प्रभावित बच्चों के फेफड़ों में सूजन और तेज बुखार सहित असामान्य लक्षण नजर आ रहे हैं। हालांकि इन बच्चों में खांसी और फ्लू, RSV और सांस की बीमारी से संबंधित अन्य दूसरे लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीमारी को लेकर WHO की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से टीकाकरण, बीमारों से दूरी बनाए रखने, बीमार होने पर घर पर रहने, नियमित रूप से हाथ धोने और उचित रूप में मास्क पहनने जैसे बचाव के उपाय करने को कहा गया है। बीजिंग और उसके आसपास के इलाकों में कुछ उसी तरह के हालात हैं जैसे कोरोना के शुरुआती दिनों में सामने आए थे। इसराइल और हमास बुधवार को 4 दिन के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हो गए, जिससे 150 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले गाजा में चरमपंथी समूह द्वारा बंधक बनाए गए 50 लोगों की रिहाई होगी और क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंच सकेगी। समझौता लागू होने पर यह पहली बड़ी कूटनीतिक जीत होगी और 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से शुरू हुए युद्ध में विराम लगेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध पर अपने विशेष मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों के साथ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध विराम की समय सीमा समाप्त होने के बाद युद्ध फिर प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल का लक्ष्य हमास के सभी सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट करना और गाजा में बंधक बनाए गए उसके सभी 240 लोगों को रिहा कराना है। नेतन्याहू ने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि युद्ध जारी है, सभी लक्ष्य हासिल होने तक हमारे प्रयास जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को फोन करके यही जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की खुफिया एजेंसी मोसाद को हमास के निर्वासित नेतृत्व का सफाया करने का निर्देश दिया है, फिर वो चाहे कहीं भी हों। अमेरिका कनाडा पुल की ओर अमेरिका से तेज गति से आ रहे एक वाहन के बुधवार को नियाग्रा फॉल्स चौकी के पास दुर्घटनाग्रस्त होने और फिर उसमें विस्फोट हो जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद कुछ घंटे के लिए सीमा पार करने के कई मार्गों को बंद करना पड़ा। अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इसके आतंकवादी घटना होने के संकेत नहीं हैं। रेनबो ब्रिज पर हुई घटना के बारे में काफी कुछ अस्पष्ट है। घटना से सीमा के दोनों ओर चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियां होने वाली हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दोनों को घटना के तुरंत बाद हालात की जानकारी दी गई। ट्रूडो ने संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना संबोधन रोककर घटना की जानकारी ली और कहा कि अधिकारी मामले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। इसके कुछ घंटे बाद न्यूयॉर्क की गवर्नर केथी होचुल और पश्चिमी न्यूयॉर्क के अमेरिकी अटॉर्नी ट्रिनी रोस ने लोगों में व्याप्त डर को शांत करने का प्रयास किया और कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। अमेरिका ने सिख अलगाववादी नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू को देश की धरती पर मारने की एक साजिश को नाकाम कर दिया है। इस मामले से संबंधित एक अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने इस संबंध में नई दिल्ली के समक्ष चिंता जताई है कि संभवतः भारत सरकार को इस साजिश की जानकारी हो सकती है। ये अधिकारी इस संवेदनशील मामले पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं है। अधिकारी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि अमेरिकी अधिकारियों को साजिश के बारे में कब और कैसे पता चला तथा साथ ही कथित हत्या के प्रयास को कैसे विफल किया गया। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। FBI और न्याय विभाग के प्रवक्ताओं ने बुधवार को इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जो संभवतः अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बृहस्पतिवार को कहा कि बुधवार रात उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वो मिसाइल दागी गई। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया की मिसाइल संभवतः लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही। इससे एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने एक खुफिया मिसाइल दागी थी। भारत और कनाडा के रिश्तों में नरमी आती दिखाई दे रही है। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने अब कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीजा सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। इससे पहले भारत ने अक्टूबर में स्थिति को रिव्यू करने के बाद चार कैटेगरी में वीजा सर्विस शुरू की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कैनेडाई नागरिकों को 26 अक्टूबर से एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा कैटेगरी में वीजा देना शुरू किया गया था। तब भारत की तरफ से चार कैटेगरी में वीजा सर्विस शुरू करने का कैनेडा ने स्वागत किया था। कैनेडा की तरफ से इसे गुड साइन बताते हुए कहा गया था कि वीजा सस्पेंशन होना ही नहीं चाहिए था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।